प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग दो, लेक्चर नंबर 48। ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो भुवच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहु सुरसुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करो हो धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने
वंदो
मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिए रीते
गणदने
अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्य निजे नाति शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उत्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये हमारी दूसरी पुस्तक है। पेज नंबर है 36। नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। यहाँ ये बात हुई है कि निशेष आवरण के क्षय के समय, यही बात बता रहे। निशेष आवरण, निशेष यानी कुछ भी बाकी रखे बिना, बाकी रहे बिना सब आवरण के क्षय के समय ही लोक और अलोक के विभाग से विभक्त, यानी उसी समय लोकालोक को जानने वाला जो ज्ञान है उसकी बात यहाँ हो रही है। तो लोक और अलोक के विभाग से विभक्त, ये गेय के दो भाग किए उन्होंने, लोक और अलोक दो भाग हुए ने, इसलिए विभक्त कहा है। समस्त वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करके, सबके आकारों को पार करना है, सबको विशेषता सहित जान लेना, बिल्कुल विस्तार से उसको जान लेना। ज्ञान सब वस्तु के आकार गेयाकार हो जाता है, अर्थात जितना गेय है उस आकार ज्ञान हो जाता है। गेयाकार कहने में निमित्त से कथन है। देखो, ज्ञान तो अपनी योग्यता से परिणमित होता है गेयाकारों को जानने रूप, परंतु किसको जाना ये कहने के लिए उसका नाम लेना पड़ता है, तो हम उसके तरफ से कथन करते हैं, इसलिए निमित्त से कथन। पेज नंबर है 36। ज्ञानाकार कहने में अपनी पर्याय से कथन है, नहीं ज्ञानाकार, गेयाकार कहने में निमित्त से कथन है और ज्ञानाकार अपने से। हाँ, जितना गेय है उस आकार ज्ञान हो जाता है, यह ज्ञान आकार हुआ है। परगेय आकार नहीं। इन्हें पर के आकार हुआ एक कहना, ये व्यवहार है। समस्त वस्तुओं के आकारों यानी विशेष दशा आदि पार को प्राप्त करके भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा अरिहंत को केवल ज्ञान में सब लोकालोक जानने में आता है। इसी प्रकार अच्युत रूप रहने से, अच्युत ने भी वहां केवल ज्ञान है, अभी उसमें से वो सोक्ष्म ज्ञानी हो जाए ऐसा कभी नहीं है। ज्ञान सर्वगत है, ऐसा ये सर्व जगह रस्व चाहिए, सर्व जगह उन्होंने दीर्घ किया है। इस पेज पर मैंने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 जगह तो रस्व कर दिया मैंने पढ़ते पढ़ते। दरवाजा बराबर बंद है कि नहीं? हाँ देखो, इसी प्रकार अच्युत रूप रहने से ज्ञान सर्वगत है। ऐसा ज्ञान होने पर भी ज्ञान गुण से तो अच्युत है, ऐसे ज्ञान सर्वगत है। यह ज्ञान सर्वगत है, केवल ज्ञान को कहा ना, ये ज्ञान सर्वगत है। ज्ञान सबको जानता है, भगवान की ज्ञान की पर्याय है, वह सबको जानती है। यानी लोकालोक, तीन काल तीन लोक सहित, यानी तीन काल तीन लोक सहित अलोक को भी ले लिया उसमें, तो सबको जानते हैं। श्रोता पूछते भविष्य का कितना जाने, कहते भूत और भविष्य अनंत जानते हैं। अनंत अनंत अनंत, भविष्य का अंत नहीं, उसको भगवान जानते हैं। अनादि 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 अनादि, द्रव्य पहला है और पर्याय बाद में है, ऐसा है। द्रव्य और पर्याय अनादि से है, गुण भी अनादि से, द्रव्य भी है, उसके पर्याय भी अनादि से है, तो भी भगवान जानते हैं। सूक्ष्म बात है, यहाँ तो आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, ऐसा सिद्ध करना है। कल हमने विस्तार से देखा ना, आत्मा ज्ञान प्रमाण कहने से वहां गुण लिया, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण वो ज्ञान की पर्याय लेना, परिणति लेना, वो कितना जानती है, तो कहते वो ज्ञेय निष्ठ है, ज्ञेय को जानती है, तो ज्ञेय की तरफ से कथन करेंगे तो ज्ञेय लोकालोक है। भगवान ज्ञान प्रमाण है, रागादि प्रमाण नहीं है। और इस जीव ने तो अपने को पर्याय जितना राग जितना माना है, ज्ञान का जुदा अस्तित्व है ये भी उसको अभी पता नहीं है। राग ही सब कुछ है ऐसा मान लेते हैं। उसी समय राग को जाना किसने, हाँ, परंतु उसका तो पता नहीं है। बस राग पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, उतना ही मैं हूं ऐसा लगता है जीव को। इतने रागादि प्रमाण नहीं है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। यह ज्ञान रागादि ज्ञेय को जाने, रागादि रागादि सहित सब कुछ है उसके, क्योंकि स्व पर सब कुछ जानने में आ रहा है, तो राग भी उसके ज्ञान का ज्ञेय है, परंतु ज्ञान जुदा है और राग जुदा है। और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है, लोकालोक अनंती पर्याय माला सहित ध्रुव है। ध्रुव है क्योंकि वहां षड द्रव्य समूह रूप लोक यानी लोकालोक है, और वो तो परिणमता है, तो कहते वो अनंती पर्याय मालाओं सहित है। व्यापार धंधा के आड़े बनिए को फुर्सत नहीं मिलती, उसमें ऐसी बातें समझनी। बनिए को जैन धर्म हाथ आया, क्या कहा, अभी जैन धर्म किसके हाथ में है, तो बनिए के, और उसको तो फुर्सत नहीं है। और बनिए व्यापार में लग गए, सारा दिन ये करूं ये करूं, उसमें मर गया। दुकान पर बैठा हो और उसमें अगर 50, 500, 700, 1000 की रोज की कमाई होती, अभी उस जमाने की बात है, हाँ, उसमें लीन हो जाता है, धूल में भी कुछ नहीं है। सुन, अकेला राग है, राग किया है, बाकी पर का तो कुछ लेना देना आत्मा कर ही नहीं सकता, उसकी लिमिट कहाँ तक है, राग विकल्प करने तक, उसने विकल्प किए, और विकल्प जैसा पैसा आया, ज्यादा भी आया तो मैंने कमाया, और फिर और उसमें रचा पचा रहता है। यहाँ कहते हैं इसी प्रकार अच्युत रूप रहने से, यानी जो ज्ञान की पर्याय अच्युत रूप से जानती है, उसमें फेरफार नहीं होता। इस प्रकार आत्मा पर्याय आदि सबको जानता है, ऐसा आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव है, यह बात यहाँ सिद्ध की है। आगे नेक्स्ट प्रवचन, यहाँ का प्रवचन नंबर 20 है। प्रवचन सार 23 गाथा चलती है, उसका भावार्थ है गुण पर्यायों से द्रव्य अनन्य है, अनन्य उससे जुदा नहीं है, अनन्य है, अनन्य है कहने से जुदा नहीं है। सूक्ष्म बात है भाई, प्रत्येक आत्मा और परमाणु जो वस्तु है, वस्तु ने द्रव्य है, वह अपने त्रिकाली गुण और वर्तमान पर्याय से अनन्य है। द्रव्य क्या है? गुण और पर्यायों का समूह है, तो वो गुण तो त्रिकाली है और पर्याय जो प्रकट दशा है वो वर्तमान में है। पर्याय और गुण से द्रव्य भिन्न भिन्न वस्तु नहीं, जैसे यह आत्मा है वह अपना ज्ञानादि त्रिकाली गुण है। ज्ञानादि कहा, एक ज्ञान है ऐसा नहीं कहा, ज्ञानादि कहने से अनंत आ गए उसके अंदर, उससे अनन्य है यानी भिन्न नहीं है। हमने देखा ना उसमें नित्य तादात्म्य संबंध है उनका, अनन्य है उससे, और उसकी पर्याय होती है, वह पर्याय भी आत्म द्रव्य से अनेर्य ने भिन्न नहीं है, क्योंकि जिस समय जो पर्याय है द्रव्य उससे तद्रूप है। ये हमने देखा था ना समय सार गाथा 308 से 311 तक, हमने उसकी पुस्तक भी कौन सी ज्ञान स्वभाव ज्ञ स्वभाव की बात देखी थी, हाँ उसमें बहुत विस्तार से बात आई थी। यहाँ पर संडे को लिया था ना आपने, कब लिया था? संडे को, संडे टू संडे लेते, संडे टू संडे ये हुआ था ज्ञान स्वभाव ज्ञ स्वभाव, डेली प्रवचन में नहीं हुआ था। तो आप आते थे तभी शायद, कुछ संडे तो आप आते थे ना, हाँ बाद में वो 47 शक्ति में भी आए, फिर बाद में रह गया। हाँ देखो देखो क्या कहते हैं, जैसे आत्मा है वह अपना ज्ञानादि त्रिकाली गुण है, उससे अनन्य है भिन्न नहीं है, और उसकी पर्याय होती है, वह पर्याय भी आत्म द्रव्य से अनेरी यानी भिन्न नहीं है। उस पर्याय में हीनाधिकता होती है, वह अपनी योग्यता से होती, हमने देखा ना उसके अपने षटकारक स्वयं से है, पर्याय अपनी योग्यता से उस समय उस पर्याय रूप से परिणमित होती है, उसमें ज्ञानावरणीय कर्म निमित्त है ऐसा कहते हैं। कहते हैं जब आता है तो कहते कहने के लिए उपचार कथन है, क्योंकि वो ज्ञानावरण कर्म तो जड़ है और यहाँ ज्ञान की पर्याय तो जीव की अपने स्वभाव से हुई है। उसमें जो हीनाधिकता होती है वो अपने से होती है, उस समय सामने जो कर्म की जैसी अवस्था होती है उस पर आरोप देकर बताया जाता है कि इसके कारण हुई। कहना बात अलग है और हमें मूल बात पकड़नी चाहिए, कथन तो ऐसे आते हैं निमित्त से। सबेरा कहा था कि अज्ञान में ज्ञानावरणीय निमित्त है, परंतु वास्तव में विपरीत ज्ञान में मोह निमित्त है। क्या कहा यहाँ, क्या कहा? अज्ञान। तो अज्ञान दो प्रकार से होता है, कौन सा? हाँ औदयिक अज्ञान भी होता है और दूसरा शौपशमिक अज्ञान, जिसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। नहीं समझे? अभी मैंने थोड़ा टेक्निकल शब्द लिया। जैसे जब तक केवल ज्ञान नहीं है तो हमारा कैसा ज्ञान चल रहा है? वो तो ज्ञान तो है हा? तो अपूर्ण है, अधूरा है, कुछ नहीं जानते। तो जितना नहीं जानते तो वो तो वैसा वैसा ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। अभी जैसे हम आप अभी हिंदी गुजराती संस्कृत कुछ थोड़ा जानते हैं, तो आप तमिल और तेलुगु और कन्नड़ भाषा जानते हैं? नहीं जानते। तो उस संबंधी अपना ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, सर्वघाती हम कहेंगे, यानी उसको औदयिक कहेंगे। और जितना हम जान रहे हैं वो क्षौपशमिक ज्ञान है। क्षयोक्षमिक ज्ञान में भी जब तक मिथ्यात्व है तब तक उसको अज्ञान कहेंगे, है तो वह क्षयोक्षम ही। इसलिए यहाँ क्या कहा, जब विपरीत ज्ञान यानी अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, तो उसमें मोह निमित्त है। यानी मिथ्यात्व है उसके कारण उस ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहने, नहीं तो ज्ञान तो ज्ञान है, फिर भी अभी आत्मा को नहीं जाना है और उसके वो विपरीतता उस ज्ञान में भी बनी रही है, इसलिए उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे, परंतु उसमें मोह निमित्त है। यहाँ तो ज्ञान का जानपना यह स्वभाव है, जानन रूप वो तो जीव का स्वभाव है, जितना ज्ञान है प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है, बाहर का जाने वह स्वभाव ऐसा यहाँ नहीं। जैसे अग्नि उष्णता से अनन्य है, अनन्य ने अग्नि और उष्णता जुदे नहीं कर सकते, भिन्न नहीं कर सकते, उष्णता अनेरी और अग्नि अनेरी ऐसा नहीं है, अनेरी नहीं जुदी भिन्न, ऐसे भगवान आत्मा उसका जो ज्ञान गुण है उससे अनन्य है, अर्थात गुण और द्रव्य अनेरी अनेरी चीज नहीं है, और उसकी जो पर्याय यानी अवस्था है वह भी आत्मद्रव्य से अनेरी नहीं है बल्कि अनन्य है, क्योंकि हमने देखा था ना जो द्रव्य द्रव्य का है वही द्रव्य वो पर्याय का है, जितना क्षेत्र द्रव्य का है उतना ही पूरा क्षेत्र पर्याय, ऐसा नहीं भी पर्याय एक द्रव्य के एक छोटे भाग में हो रही है और बाकी पूरा के द्रव्य भाग खाली है, ऐसा कभी नहीं होगा, जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण उतनी बड़ी उसकी पर्याय। अब द्रव्य और गुण तो त्रिकाल है, अनादि अनंत कायम है, परंतु पर्याय उस एक समय के लिए है, वहां से उसको कोई हटा नहीं सकता, और एक के एक समय के लिए द्रव्य गुण पर्याय जो है वो तो तद्रूपेण तादात्म्य है उसमें, इसको अनित्य तादात्म्य संबंध कहा था हमने, एक समय के लिए है मगर वो तादात्म्य तद्रूप है, यानी द्रव्य उस समय उस पर्याय रूप से ही उपस्थित है, वो पर्याय से उसको कोई जुदा नहीं कर सकता। यहाँ क्या कह रहे, यही कह रहे यहाँ पर, ये हम समझने के लिए उसको ऐसा जुदा जुदा कथन करते हैं, पर वस्तु चीज एक ही है कि नहीं है, हम कथन करते उसको समझने के लिए आचार्यों ने उसको, क्योंकि केवल ज्ञानी ने उसको द्रव्य को कैसे जाना है, तो अनंत गुणों का उन्होंने अनंतों को जाना है, हम तो दो चार गुणों को याद करते तो थक जाते हैं, अभी सोच सोच कर निकालना पड़ता है और एकाध गुण कहो और एकाध गुण कहो, यहाँ तो अनंतों में है। तो भगवान ने द्रव्य किस रूप से जाने, द्रव्य का स्वरूप क्या है, वस्तु व्यवस्था क्या है, वस्तु यानी द्रव्य, तो द्रव्य कहना किसको है, तो वहां तो अनंत गुणों का पिंड अभेद ऐसा, और हर एक गुण पूरे भाग में है, जैसे ज्ञान गुण भी जीव के पूरे भाग में, दर्शन गुण भी पूरे भाग में, सुख गुण भी पूरे भाग में, वीर्य गुण भी पूरे भाग में, इस तरह से, और हर एक की अपनी अपनी वर्तमान पर्याय तो होती है, वो प्रकट अवस्था है, द्रव्य वर्तमान में उस रूप से विद्यमान है, इसलिए कहते उस समय के वो भी द्रव्य से जुदा तो हो नहीं सकता। हाँ हम सोच सकते हैं, उसको गौण कर सकते हैं, पर वो द्रव्य में से कोई उसको हटा नहीं सकता, क्योंकि जब हम स्वभाव भाव को हमको मुख्य करना है तो हम उसको गौण करके उसको मुख्य कर सकते हैं, पर आप कहेंगे पर्याय को निकाल बाहर कर दो, वो तो द्रव्य ही नहीं रहेगा, और वो द्रव्य पर्याय है वहां पर और द्रव्य से अभिन्न होती है ये जानना पहले पड़ेगा, पहले वो ज्ञान का गेय है, इसलिए यहाँ ज्ञान अधिकार में पहले उसको लिया है, जब आगे जाके श्रद्धान के लेवल दृष्टि के विषय की बात है तब उसको गौण किया जाता है, पर गौण किया जाता है उसको हटा नहीं सकते वहां, एक गौण और मुख्य भी ज्ञान में किया जाता है, और दृष्टि में यानी श्रद्धा में केवल वो मुख्य जो है उसको हम बस स्वरूप से पकड़ सकते हैं, परंतु अगर पर्याय का निषेध करेंगे तो हमारा ज्ञान खोटा हो जाएगा। देखो समझ में आता है, आत्मा विपरीत पर्याय यानी अज्ञान करता है तो उसमें मोह निमित्त कहने में आता है, यानी मिथ्यात्व के निमित्त से वो ज्ञान का भी वो भी झूठा है, उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे। दूसरा एक विचार आया था कि उस ज्ञान में कमी, बहसी, बहसी क्या होता है, हीन अधिक, कमी बहसी हीन अधिक पर्याय होती है, वह अपने से होती है, उसमें ज्ञानावरणीय निमित्त है, इसी बात है, यानी जो ज्ञान में जानने में जो हीनाधिकता हो रही है वो अपनी यानी पर्याय की योग्यता से स्वयं से हो रही है। सामने वहां कौन सा कर्म वहां मौजूद है, ज्ञानावरण का, उसका क्षोभ हीनादिक होता है, तो यहाँ उघाड़ भी जीव का हीनादिक होता है। तो उसके कारण हुआ ऐसा नहीं है, हुआ तो अपने से उपादान से, परंतु वहां निमित्त है और निमित्त की तरफ से कथन होता है। एक दूसरी बात, आज तो एक बात आई थी, सब जगह पुरुषाकार आकृति कहते हैं ना, जीवानाम परस्पर उपग्रहो, ऐसा उस पर लिखते हैं, क्या कहा, वो तो लोक का लोक की फिगर आती है, हाथ दिखाते और परस्परो उपग्रहो जीवानाम, ऐसा आता है, यानी जीवों को एक दूसरे को उपकार करना चाहिए, बराबर है ना। उपकार का अर्थ क्या है, निमित्त होते, निमित्त होते। उपकार का अर्थ हम जो फेवर करना उसका, वो उपकार का अर्थ नहीं है, उपकार का अर्थ ही निमित्त है। देखो वह तो बहुत समय पहले कहा था, परस्पर उपग्रह नाम निमित्त से कथन है, गुरु शिष्य को निमित्त होते हैं और शिष्य गुरु को निमित्त होता है। क्या शिष्य भी गुरु को निमित्त होता है? अग्नि देखो देखो वो नहीं है, अरे वो सुनने के लिए है ना, सामने उसके निमित्त से तो गुरु ये शास्त्र लिख, उसको देखकर समझाने का विकल्प आया ना उनको, इसलिए उसमें निमित्त है। वो भैया वृत्त करता है और वो भोजन देता है, आहार देता है, वो बात नहीं है। इसका अर्थ गुरु कोई शिष्य का कार्य कर दे और गुरु के शरीर का कार्य कोई शिष्य कर दे, ऐसा नहीं है। आजकल तो ये बात बहुत चलती है ना, परस्पर उपग्रह, परस्पर उपकार करते हैं, लेकिन उपकार की व्याख्या ही ऐसी है कि परस्पर परद्रव्य में जब जो पर्याय होती है तब उपकार नाम निमित्त है, तो उपकार करने में आता है, कहने में आता है। यहाँ गुरु ने उपकार किया, उसको सिखाया, और शिष्य ने उपकार किया कि उनकी सेवा की, ऐसा उसका वो उपकार का अर्थ नहीं, यहाँ निमित्त में लेना। निमित्त ने शिष्य को समझाने का विकल्प गुरु को आया है, शिष्य को देखकर इसमें उसको निमित्त लिया। उपकार का अर्थ ऐसा है नहीं, सर्वार्थ सिद्धि में लिया है भाई। कि उपकार का अर्थ इतना है कि जब परद्रव्य की पर्याय होती है, पेज नंबर 38, ये बड़ा पैराग्राफ है, ऊपर से दूसरा, उसमें नीचे से दूसरी लाइन, जब परद्रव्य की पर्याय होती है उसमें निमित्त को उपकार कहने में आता है, उसको सहकार भी कहते हैं। हम जो लौकिक में उपकार शब्द है, फेवर करना, वो उसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। उस सूत्र के पहले एक सूत्र आया है कि ये शरीर मन वाणी है, तो इस पुद्गल का आत्मा में उपकार है, क्या कहा, ऐसा पाठ है। उपकार का अर्थ निमित्त है, उसमें तो जीवन में मरण में भी निमित्त है, उपकार है कहा, तो मरण ये पुद्गल का उपकार है जीव पर। उपकार अगर शब्द का हम फेवर कहेंगे तो मरण ये भी फेवर हो गया। यह श्वास है, मन है, वाणी है, शरीर है, यह आत्मा को उपकार अर्थात पुद्गल उपकार करता है, उसका अर्थ पुद्गल निमित्त रूप से होता है। वास्तव में तो पुद्गल को आत्मा छूता नहीं और आत्मा को कभी पुद्गल छूता नहीं। क्यों नहीं ऐसा कहा, उसका अर्थ क्या, हम शास्त्रीय भाषा में क्या कहेंगे नरेंद्र? हाँ, और दूसरा कुछ, हाँ, प्रत्येक का स्वचतुष्टय जुदा जुदा है, इसलिए उसको छूता तक नहीं सकेंगे। भले एक जगह में दोनों रहे, एक जगह में रहने एक क्षेत्रावय का संबंध होवे, फिर भी प्रत्येक का स्वचतुष्टय जुदा जुदा है, प्रत्येक का अस्तित्व जुदा जुदा है, फिर भी एक दूसरे को कुछ कर सकते नहीं। सूक्ष्म बात बहुत है भाई, समझ में आया? इसके लिए सारे वो सिद्धांत जो है हमको बिल्कुल, जिसको कहेंगे, हृदय तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते तो वो सारे हमारे नजर के सामने या मन में, ये सब भी उसका रीजनिंग पता होना चाहिए, नहीं तो हमने केवल सुना, सुनने के लिए अच्छा लगा और चलो हो गए। ऐसा पाठ है, लो परस्पर उपग्रह है ना, उसके पहले यह पाठ है, तत्वार सूत्र में पांचवे अध्याय में ऐसा आता है, पुद्गलानाम उपग्रह उपकार है, हाँ मखोड़ा, उसके आगे वो गति स्थिति के भी उसमें धर्म अधर्म का उपकार है, ऐसा भी आकाश से अवगाह ऐसा भी आकाश का उपकार है, ऐसे सभी द्रव्यों का निमित्तपना बताया है। पुद्गलानाम उपकार यानी पुद्गलों का उपकार है। जीव में पुद्गल निमित्त है तो उसको यहाँ पुद्गल का उपकार कहने में आया। देखो जीव के लिए पुद्गल को उपकार कहा, पुद्गल के लिए जीव को नहीं कहा, नहीं समझे? जीव के पर्याय में पुद्गल को निमित्त यानी निमित्त रूप से लिया यहाँ, क्योंकि शरीर मन वाणी इसमें सारा निमित्त रूप से होता है, पर पुद्गल के जो पर्याय होती है उसमें जीव को निमित्त नहीं कहा है। किसको कहा? काल को कहा, काल को। वो काल है तो कैसा कुछ शब्द आया है पंचाशिकाय में, हाँ कालकरण शब्द आया था, कालकरण यानी काल उसका हेतु है। जीव में तो पुद्गल को हेतु कहा है, पर पुद्गल में जीव को हेतु नहीं कहा, पुद्गल में काल को हेतु कहा है। देखो देखो जीव में तो जैसे कर्मों का निमित्त है, या जो शरीर वगैरह रचना होती है, मन है, ये सब इसका निमित्त है, जानने में वो इंद्रियों की रचना हुई इंद्रिया निमित्त है, पर पुद्गल का जो परिणमन हो रहा है वो आप कहेंगे हमने बटन लगाया, हमने ये सब रचना की, हमने पुस्तक बनाए, हमने लिखा, इसलिए होता है ना? नहीं, उसमें तो काल को निमित्त कहा। हाँ हमने पढ़ा था पंचाशिका में, आपको याद होगा तो। हाँ श्रोता कहते एक और उपकार कहना और ऐसा अर्थ करना, उपकार की व्याख्या ही है। देखो लौकिक में उन शब्दों का जुदा अर्थ है और यहाँ अध्यात्म क्षेत्र में उसका अर्थ जुदा है। यहाँ जो अर्थ है उसको हम उसी पद्धति से उसको स्वीकार करना है। हमारे मन में जो लौकिक अर्थ होते उसको लेकर यहाँ नहीं पढ़ना है, नहीं तो हमारी जो मान्यता तो पहले से गलत थी, इसको और उसी मान्यता के साथ इसका अर्थ लगाने जाए तो वैसा ही रहेगा, तो उसमें तो कुछ सुधारने का चांस ही नहीं है। फिर उपकार की व्याख्या ही ये है। बहुत साल पहले यह बात छेड़ी थी, अभी तो चारों ओर साधु प्ररूप ना ही ऐसे करते हैं कि एक दूसरे का उपकार करो, कुछ दो कुछ लो। अभी ऐसे एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, जो और जीने दो, बस ऐसा ही उसका अर्थ करते हैं, और वो सुनने को अच्छा लगता है सब समाज को, इसलिए अच्छा उसी को चलाते हैं। उपकार की व्याख्या ही तुझे मालूम नहीं प्रभु, उपकार की यह व्याख्या सर्वार सिद्धि में लिए, सर्वार सिद्धि ग्रंथ का नाम है, तत्व सूत्र की टीका है वह। किसने लिखी है सुशीला बेन? पूज्यपाद आचार्य के नहीं, किसकी सर्वार सिद्धि किसकी? पूज्यपाद की। हाँ आत्मा में पुद्गल का उपकार है, उसका अर्थ क्या? देखो यहाँ अर्थ फिर बता रहे, ये शरीर मन वाणी पुद्गल का आत्मा में उपकार है, नहीं क्या निमित्त है? शरीर बनने में वो तो आहार वर्गणा से वो शरीर बना है, कारमान वर्गणा से कर्म बना है, मनोवर्गणा से मन बना है, वो सब पौद्गलिक रचना है, वो निमित्त है, बस इतना ही लेना उसमें। उसका अर्थ क्या कि निमित्त है इतना, बाकी एक दूसरे का कार्य करे नहीं, वह निमित्त है इतना, क्योंकि निमित्त ही उसको कहते हैं, वो परद्रव्य में कुछ नहीं करता है, वो तो अपने से अपने में जो कुछ उसका कार्य हो रहा है उसको कहा जाता है कि इसके कारण इसका ये हो गया। वह बात तो बहुत बार कही थी ना, यह देह देखो उसमें ऐसी ऐसी अवस्था होती है, वह तो उससे होती है, उसमें आत्मा की इच्छा को निमित्त कहने में आता है, परंतु इच्छा से ऐसी अवस्था हुई ऐसी बात नहीं है। तो हमने इच्छा करके बोला कि नहीं बोला? कहते नहीं, इच्छा के कारण नहीं, क्योंकि कभी कभी डर के मारे बहुत चिल्लाने की इच्छा होती है और आवाज ही नहीं बाहर, ऐसा होता है कि नहीं? और किसी को पैरालिसिस हुआ है, मुंह से बोला नहीं जाता, इच्छा तो बहुत हो रही है, हिला नहीं सकते, हिलते नहीं है, वो शरीर की योग्यता ही नहीं है। और जब हिलते हैं तो मैंने बोला मैंने ये किया ऐसा लगता है। कहते जगत को भिन्न तत्व क्या है उसकी खबर नहीं। समझ में आया? यह वाणी होती है, वाणी यह जड़ की दशा है, शब्द वर्गना के परमाणु मिट्टी है। मिट्टी कहने से वो पुद्गल है, रजकन है, बस इतना ही लेना है। जिसको भाषा वर्गना कहते हैं वह वाणी की पर्याय अपने से होती है तो इच्छा को निमित्त कहने में आता है, परंतु इच्छा से वह भाषा होती है ऐसा तीन काल तीन लोक में नहीं है। आप कहेंगे थोड़ा कभी जब होता है तब तो कहो, जब इच्छा से बोलते तब। देखो हम जोर से बोलते हैं, हम स्लोली बोलते हैं, इच्छा से होता है कि नहीं होता? लोगों को एक तत्व से दूसरा तत्व भिन्न है उसकी खबर नहीं है। दूसरा तत्व का दूसरा तत्व करे क्या, यानी एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आत्मा गति करता है तो धर्मास्तिकाएं सहाय करता है, उसको निमित्त कहो, उपकार कहो, सहाय कहो, एक ही बात है। लो ऐसा भी आता है, भाई सहाय शब्द आता है, उसका अर्थ क्या? कि आत्मा गति करता है, शरीर गति करता है, तो क्योंकि पुद्गल में भी वो क्रियावती शक्ति है, जीव में भी अपनी है, दोनों अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से स्वयं उपादान से गमन का कार्य होता है। अब जहाँ एक साथ आत्मा भी जा रहा है, पुद्गल भी जा रहा है, क्योंकि और जीव ने उस पुद्गल ही मैं हूँ ऐसा मान लिया, तो मैं जा रहा हूँ और मैंने वो क्या स्कूटर चलाई, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो भगवान ने धर्मासिकाय नाम का अरूपी पदार्थ देखा है, वह गति करने में निमित्त है, उसकी उपस्थिति है और उसकी उपस्थिति में यहाँ जीव गमन करता है, पुद्गल गमन करता है। सहाय करते ऐसा कहते हैं, सहाय का अर्थ है बस इतना, कोई मदद करता है ऐसा है नहीं, बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ हाँ, तत्व क्या है इसकी खबर नहीं। नौ तत्व भिन्न भिन्न है। अभी हम नाम ही नौ इसलिए लेते तो भिन्नता होगी, तभी छह द्रव्य छह के नाम इसलिए जुदे हैं कि वो जुदे जुदे ही है, उसका अस्तित्व जुदा है, उसका स्वरूप जुदा है। भिन्न भिन्न नहीं हो तो नौ तत्व ही रह सकते नहीं। परमाणु शरीर वाणी मन आदि अजीव तत्व भिन्न है, यहाँ तत्वों की भाषा में कह रहे हैं, उसको सबको अजीव तत्व में डाला। भगवान आत्मा अरूपी भिन्न है, पुण्य पाप के भाव होते वह भी भिन्न है, क्योंकि पुण्य तत्व जुदा है, क्योंकि नव में लिया है ना, तो पुण्य तत्व जुदा, पाप तत्व जुदा, आश्रय जुदा, बंध जुदा, क्योंकि हर एक को जुदा जुदा स्थान है, तो वो सारे जुदे जुदे है। यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि आत्मा जो है वह अपने गुण पर्याय से एकमेक है, आत्मा जो वस्तु है वह अपने गुण पर्याय से अनन्य है, अनन्य है यानी जुदा नहीं है। यहाँ जो सिद्धांत कहा है यह तो सब द्रव्य के लिए है। अब यहाँ जो द्रव्य की बात चल रही है, वो नव तत्वों की बात, वहाँ पर्यायों को जुदा जुदा स्थान दिया है, परंतु यहाँ द्रव्य गुण यानी गुण पर्याय और द्रव्य अभिन्न है, वो बात यहाँ चल रही है। गुण पर्यायों से द्रव्य अनन्य है, इतना समझ में आया? इसलिए इस कारण से क्या सिद्धांत कहा पहले कि प्रत्येक वस्तु गुण पर्याय से अनन्य है, वस्तु यानी द्रव्य, द्रव्य ही कहेंगे उसको कि गुण और पर्याय वाला जो है वो द्रव्य है। अनन्य नाम गुण पर्याय से अनेरी अनेरी नहीं वाला भी कहना नहीं, उसमय है। हाँ, प्रत्येक वस्तु अपने गुण और पर्याय अपनी पर्याय से एकमेक है, एकमेक कहा। सहित कहने से क्या होता है, द्रव्य जुदा और गुण जुदे, गुणों सहित द्रव्य है, तो द्रव्य में क्या है जुदा दूसरा, नहीं समझे? अगर हम कहेंगे ये पट्टी है वो पेन सहित है, ऐसे ये पट्टी जो है स्लेट ये स्केल स्केल वो इसके सहित है, तो ये दो जुदी जुदी चीज हुई, अगर हमने कहा ये द्रव्य है वो गुण पर्याय सहित है, क्या ऐसा है? हाँ, गुण पर्याय मय है। हाँ, कहीं कहेंगे उसको उसका समूह है उसको, परंतु वही लिखा उससे अनन्य है। नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं है। स्केल है ये, वो जो प्लास्टिकमय है, प्लास्टिक से बना है, ऐसा द्रव्य है। अभी यहाँ उसकी बात ही नहीं। अब जो द्रव्य है वो गुण पर्याय वाला, ये गुण पर्यायमय है, उस रूप है, ये कह रहे हैं आप। यानी मैंने ये जैसा नहीं है, ये अगर दो वस्तुएं ऐसे द्रव्य और गुण पर्याय जुदे जुदे नहीं है, ये कहना था। एकमेक है, यानी द्रव्य है अपने गुण और पर्यायों से एकमेक है। यह शरीर है, देखो यह परमाणु है, इस परमाणु के वर्ण गंध रस स्पर्श से यह परमाणु अनन्य है। पुद्गल है तो उसको अपने स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण है, उससे वो अनन्य है, और उसकी अवस्था होती है वह परमाणु से अनन्य है। अवस्था होती है, यह वर्ण बदल गया, जैसे कैरी हमने हरे रंग की लाई थी और वो पीली हो गई, तो वर्ण नष्ट हुआ क्या? क्या हुआ? वर्ण तो है, वर्ण चेंज यानी वर्ण की अवस्था बदली। हरा वर्ण था वो पीला वर्ण हुआ, वर्ण तो वर्ण कायम है। तो परमाणु अपने स्पर्श रस गंध वर्ण से अनन्य है, और उसके अवस्था से भी परमाणु अनन्य है, ऐसी बात है। ऐसे आत्मा में ज्ञानादि जो त्रिकाली अनंत गुण है, इस त्रिकाली गुण से आत्मा अनन्य है, क्योंकि गुण तो त्रिकाल रहते हैं, नित्य तादात्म्य संबंध है, अनंत गुण है, प्रत्येक गुण वो द्रव्य से अनन्य है। अनेरा गुण और अनेरा द्रव्य ऐसा नहीं, अनेरा यानी जुदा, और उसकी वर्तमान पर्याय होती है, इस पर्याय से भी भगवान आत्मा अनन्य है। अब यहाँ आत्मा पर घटित कर रहे, हर एक द्रव्य में ऐसा ही है, अब हमारा प्रयोजन है आत्मा संबंधी बात चल रही, तो कहते वो भी उसके वर्तमान पर्याय से आत्मा भी अनन्य है, उससे वो जुदा नहीं हो सकता। पर्याय अनेरी और द्रव्य अनेरा ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है, ये ज्ञान का विषय है। पहले में पहले द्रव्य कैसा है, क्या है, उसकी व्यवस्थित, अगर हमें उसके बारे में कोई संदेह है, संशय है, विपरीतता है ज्ञान में, तो फिर समय दर्शन नहीं हो सकता। इसको जैसा है वैसा पहले नक्की करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या सिद्ध करना है, द्रव्य गुण पर्याय जुदे जुदे नहीं है, वो एक अस्तित्व में है। कहो समझ में आता है कुछ? पहले तो यह सिद्धांत कि मनना अड़ी तो चार पैसे शेर, एक कुंची है, कुंची यानी चाबी, ये समझ में आता? नहीं समझे? हाँ रक्षा बहन, ये क्या है? मन किसको कहते हैं? कितने शेर का मन होता है? कभी पढ़े नहीं ना? 40 किलो का नहीं, 40 शेर का। हाँ देखो देखो, मन ना अढ़ी, अढ़ी यानी अढ़ी रुपए, अढ़ी रुपए यानी कितना, कितने आने हुए, कितने आने हुए, 40 आने का एक मन, तो एक आने का एक शेर, चार पैसे का आना था, नहीं समझे? अरे छह नया पैसा है। जिस जमाने में हम मन की बात कर रहे हैं, उस समय तो चार पैसे का एक आना, और चार आने का क्या कहते हैं, आपको मालूम नहीं है? आप कौन से जमाने में हैं? आप नए पैसे में ही जन्मे हैं। हम तो चौथी तक ये सब यही से सीखे हैं, बाद में नया पैसा बाद में आया, आपने भी सीखा ना? देखो चार पैसे का एक आना था, और चार आने का रुपए, चार आने का रुपए तो आपके जमाने में भी था, पर वो चार आने की वैल्यू आपने 25 पैसे कर दी थी। हमारे जमाने में 4×16 पैसे का एक चार आना था, है ना? यही कह रहे हैं कि मन को 2.5 रुपए हो गए, तो 4 पैसे में शेयर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट करके बताया ना, 2.5 रुपए ने क्या, 1 रुपए की 4 आने, नहीं नहीं 16 आने, 1 रुपए के 16 आने, 16 16 32 40 आने हो गए, तो एक शेर को 1 आना लगा, 1 आना उस जमाने के 4 पैसे, वो जूने पैसे का हिसाब है, नए का नहीं। ना 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 ना, किलो से भी ज्यादा हो जाता है।
एक रतल,
रतल 5 शेर का
एक रतल। नहीं नहीं,
नहीं
से ज्यादा। किलो,
किलो जितना ही
करो। 2.2 रतल इज इक्वल टू 1 किलो।
नहीं, आधा।
2.2 रतल इज इक्वल टू 1 किलो।
2.2 pound is equal
to 1 kilo.
As good as, हाँ, difference है, हाँ।
आपको समझने के लिए बता रहे हैं, किलो कहो या शेर को करीबन एक
ही, और 1 पैसे की 12 पाई आती
थी, वो अलग है।
पाई तो 1 पैसे की 3, 1 पैसे की 3 पाई का 1 पैसा था।
1 पैसे की 3 पाई
तो ये आने में वो तो 3 चौक 12 हो जाएगी ना।
92 पाई था 1 रुपए।
अब ये गणित किसी को समझाने से कोई फायदा नहीं है। मुझे तो याद है स्कूल में भी हम ये पैसा ये सब हमारे गणित ऐसे ही थे। क्या कहते हैं आप? देखो देखो, जूने 4 पैसे का आना और नए 6 पैसा का आना। यानी 100 पैसे का रुपया हुआ और पुराने 64 पैसे का रुपया होता था। वो 64 पोरी आता है ना हमेशा। सोलह आने का रुपया था, हाँ, तो 1 आने में 4 पैसा। हाँ, डब्बू पैसा आता था। हाँ, स्कूलों में हमको था ना इसी गणित में, हमने स्कूल में गणित किया। चलो चलो आगे बढ़ते
हैं।
सारा पुद्गल है, इतना जान लो बस।
हाँ,
देखो नीचे हम पढ़, 39 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे ना। नहीं, वो हाँ कुंची बताई थी हमने, नीचे से दूसरी लाइन पढ़ा था। मन ना अड़ी तो 4 पैसे शेर एक ऊंची, समझ में आया? 2.5 रुपए मन तो 37.5 शेर ना 37.5 आना, 2.5 रुपए मन तो 6.5 शेर ना 6.5 आना। उन्होंने 2.5 के उसमें हिसाब में ले लिया। यह दृष्टांत कहा 2.5, अच्छा। वो चढ़ावा कहते, चढ़ावा, हाँ। यह तो दृष्टांत कहा, ये दृष्टांत में हम कितने उलझे। बाकी सिद्धांत भूल हो जाएगा। ऐसे भगवान आत्मा या प्रत्येक पदार्थ अपनी कायम रहने वाली शक्ति नाम गुण और उसके वर्तमान होने वाली अवस्था, गुण है तो हर एक गुण की अपनी अपनी वर्तमान में अवस्था रूप से वो गुण है। ये अवस्था और गुण से द्रव्य अनन्य एक ही है, भिन्न भिन्न चीज नहीं है। हम कहते देखो समझने के लिए हमने इतने उसके गुणों के भेद किए, पर्यायों के भेद किए, ऐसा वैसा इतना सब, मगर एंटिटी वो द्रव्य क्या है, वो एक है क्या अनेक है? द्रव्य एक है, वो द्रव्य क्या है वो समझने के लिए इतना सारा विस्तार से समझाया था। क्योंकि द्रव्य को जब तक नहीं समझते हैं, उसके परिणमन व्यवस्था नहीं समझते हैं, तो ये भूले तो चलती है। दूसरे द्रव्य को ये मैं हूं मान लिया हमने एक बार, और उसका कार्य मैं करता हूं ऐसा भी मान लिया।
देखो जब द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य
इसको पता नहीं कितने बार चेंज किया। यहाँ पेज नंबर 40 पर आए हम। यह कोई कहानी नहीं है, यह तो भगवान की कथा है। कथा यानी स्टोरी नहीं, उन्होंने बताई हुई बात है और यह वस्तु स्थिति है। यहाँ कहते हैं गुण पर्यायों से द्रव्य अनन्य है। अभी तो अनन्य का अर्थ समझे नहीं। अनन्य नाम गुण और पर्याय द्रव्य से वस्तु से अलग नहीं, समझ में आया? अग्नि उष्णता से जुदी नहीं, और उष्णता की वर्तमान पर्याय जो उष्ण है वह अग्नि से अनन्य है। उष्णता तो उस अग्नि का गुण है, अग्नि जो है उसका उष्ण गुण है, तो उष्ण गुण और अग्नि अनन्य है। अनन्य ने अनेरे अनेरे नहीं है, अनन्य है। और उष्णता की वर्तमान पर्याय जो उष्ण है, इस पर्याय से भी द्रव्य अनन्य है, यानी वही है। अनेरी पर्याय अनेरा गुण और अनेरा द्रव्य ऐसा नहीं है। भगवान का मार्ग सूक्ष्म बहुत भाई, क्या हो सकता है? लोगों को तत्व की खबर नहीं और मानते हैं धर्म हो जाएगा। श्रोता कहते तीनों का स्वरूप तो अन्य अन्य है, क्षेत्र एक है। समाधान, अभी वह बात ही नहीं। यहाँ क्या समझाना चाहते उस पहले समझ लो। कहते अभी तो परद्रव्य से भिन्न और अपने गुण पर्याय से अभिन्न है, इतना सिद्ध करना है। उसमें जो भेद है कथनचित किस अपेक्षा से, भावों की अपेक्षा या जो कुछ है, वो तो बाद में बताएंगे। अभी तो क्या करना है, द्रव्य अपने गुण पर्याय से अभिन्न है और पर से भिन्न है। यानी जो विषय जो है, जहां जो समझा रहे उसको बराबर पकड़ना है। यहां तो अनंत गुण सिद्ध करना है, ज्ञान आत्मा प्रमाण और आत्मा ज्ञान प्रमाण ऐसा सिद्ध करना है। वस्तु सिद्ध करनी है, बाद में उसकी पर्याय जो है वह वस्तु से भिन्न ऐसा लेना है। यानी जब पर्याय और द्रव्य को भिन्नता बतानी है तब उसका विषय वो अलग से बताएंगे। लेकिन अभी बहुत सूक्ष्म पड़ेगा, अभी उसका काम नहीं है। क्योंकि जो जैसे ना स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर समझाया जाता है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है ना। अभी द्रव्य गुण पर्याय क्या है उसको समझा रहे, अभी तो पर द्रव्यों से पर के गुणों से जुदा है ये बात यहाँ समझानी है। नहीं तो उसकी पर्याय जो है उसका क्षेत्र भिन्न है और द्रव्य गुण का क्षेत्र भिन्न है, वह तो बहुत दूर की बात है। वो बात ही उसकी अपेक्षा भी समझना यहाँ अभी वो विषय ही नहीं। अभी वहां साधारण इंसान को बेचारे को पकड़ में नहीं आए, समझ में आया? और ये बात अगर अभी यहाँ निकाले तो छोड़ ही देगा। अभी जितना पछता है उसका थोड़ा थोड़ा पछने दो। हाँ, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को, घर में बच्चा है 2 महीने का, क्या क्या खिलाती है बहन उसको, क्या क्या खिलाते 2 महीने के बच्चे को, क्या क्या खिलाते? अरे माँ का दूध पिया, नहीं वो होगा वो अवेलेबल तो ऊपर का दूध पिलाएंगे, और क्या है? कोई जूस बूस दे तो दे, मगर उसको पूरन पोली खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? यहाँ तो इतना सिद्ध करना है कि सोना जो है यह द्रव्य है, उसमें पीलापन चिकनापन वजन है वह गुण है, इस गुण से सोना भिन्न नहीं है। और सोना की जो कुंडल कड़ा आदि अवस्था होती है वह अवस्था सोने से भिन्न नहीं है। ये दृष्टांत भी बहुत स्थूल उदाहरण दिया है जो हमारे रोज परिचय का है। वैसे सोना भी पुद्गली द्रव्य है और उसमें वर्ण रस स्पर्श वगैरह भी है, परंतु यहाँ समझाने के लिए वो पीलापन चिकनापन वजनपन इत्यादि की बात समझा रहे हैं। वह अवस्था सोना से अनन्य ने एकमेक है, इतना सिद्ध करना है। यह तो प्रत्येक वस्तु की बात कही, इसलिए यानी इस कारण यह सिद्धांत पहले कहा मणना अढ़ी रुपया तो 37.5 आना, हम तो कहेंगे मन के 40 आने होते तो 40 शेर आ जाते हैं ना, वैसे प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय से अनन्य है, इसलिए आत्मा ज्ञान से हीनाधिक न होने से, यह आत्मा जो है उसमें ज्ञान गुण है उससे हीन अधिक नहीं है, ज्ञान गुण से आत्मा हीन या अधिक है ऐसा नहीं है, ज्ञान गुण से अभेद है, पूर्ण गुण पूर्ण द्रव्य के साथ अभेद है, यानी द्रव्य इतना बड़ा है और ज्ञान गुण यहाँ तक ही है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं तो ये बाकी बचा हुआ द्रव्य अचेतन हो जाएगा। अब द्रव्य इतना है और ज्ञान गुण थोड़ा अधिक होगा बाहर फैला हुआ, ऐसा भी नहीं है। हाँ आने वाली है, आएगी आगे, हाँ आने वाली। वो यह आत्मा जो है उसमें ज्ञान गुण है उससे हीन अधिक नहीं, ज्ञान गुण से आत्मा हीन या अधिक है ऐसा नहीं है, ज्ञान ये तो हमने पढ़ा था, पूर्ण गुण पूर्ण द्रव्य के साथ अभेद है। यह तो तत्व ज्ञान का विषय है भाई, यह कोई वार्ता नहीं है, उसे समझने के लिए मध्यस्थता कहिए। ये द्रवता में एक एक्स्ट्रा मात्रा लग गई है, आग्रह छोड़कर समझना चाहिए, यानी पूर्वाग्रह जो होता है हमारी पहले की मान्यता है जो कुछ अन्य होगी और यहाँ कुछ अन्य बताया है, तो समझने के लिए शांति से थोड़ा समझो, जो कोई आपकी पूर्व की मान्यता है वो लॉक एंड की में रखो, बाद में उसको रखना के फेंकना वो आप नक्की करो, ये कह रहे हैं। वो स्टोरी आती है ना, स्टोरी कहना तो इनका काम है। अभी बच्चे बड़े हो गए। वो एक था व्यापारी था, यानी हीरे का व्यापारी था, पर क्या है वो वृद्धावस्था आ गई उसके, बहुत गरीब हो चुका था, मरण के समय बच्चे को नजदीक बुलाया और उसको कहा कि ये दो हीरे है रत्न है वो लेके जा, मेरा अमुक अमुक मित्र है उसके पास, अभी तो मैं बचूंगा नहीं, मेरी तो देहांत होने वाली है, तो उसके बाद उसके पास जा, वो उसको सही दाम दे देगा आपको। तो उसके मरण के बाद वो बच्चा गया वहाँ, वो रत्न उसने जो दिए थे वो लेके गया, तो व्यापारी को बताया ऐसे ऐसे पिताजी का देहांत हो गया, उन्होंने ऐसे ऐसी बात बताई थी, तो उन्होंने देखा कहते ठीक है अभी तो अच्छा यानी उसके दाम अभी अच्छे नहीं आएंगे, तो ऐसा कर ये तिजोरी के ये अंदर के कप्पे में रख और वो ये चाबी तेरे पास रख, अब क्या है तू मेरे पास सीख, दुकान में बैठ और ये धंधा कैसे करना क्या है, वो रत्न को कैसे समझना परखना वो सब उसको सिखाया। तो उसके पास वो 6-8 महीना जो कुछ काम सीख गया, बाद में बोला अभी समय आ गया तेरे रत्न बेचने का, निकाल के ले आज। तो उसने निकाला और देखा तो उसने फेंक दिया। और पहले वो बताता है इसके कुछ वैल्यू नहीं, तो उसको एकदम हाँ इसने तो मुझे फंसाया है, अभी स्वयं परखना सीख गया। तो जब अपने स्वयं परखने की योग्यता आ जाती है तो हमारी पहले की मान्यता जो झूठी है अभी उसको क्या करे, कहाँ फेंक दे, कहाँ रखे, ये ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता, वो रहते ही नहीं है। सही मान्यता सही हो जाए एक्सेप्ट हो जाए तो हम कहीं अटके थे ऐसा लगता है, अभी उसका अफसोस करने से भी कुछ नहीं, जो वो पर्याय जो होनी थी वो तो हो चुकी है, वो योग्यता से हो गई है, परंतु अभी सही मार्ग हाथ में आ गया, अभी पक्ष से यानी आग्रह से दुराग्रह से वो पुरानी बात अगर चालू रखेगा तो उसको कल्याण का मार्ग ही कभी नहीं मिलेगा, ये कह रहे। यहाँ लिखा ना आग्रह छोड़कर समझना चाहिए, रत्न फेंक दी ना उसने वो कांच, कांच है ना वो यानी वो रत्न नहीं है कांच है, ये उसने पहचान स्वयं परीक्षा से पहचाना, तब उसको ख्याल में आ गया क्या था। अभी सिद्धांत भी बता चुका चुके हम, तो जैसे हमने जो पहले हमारी जो मान्यता थी, हम ये सही जो पढ़ रहे अभी शांति से सुनो शांति से विचार करो अपने पूर्व के साथ मिलान कर दो तो पता चलेगा कि कौन सी सही है, और वो सही उसी को लगेगी कि जिसकी होनहार वो समझने की है, वो नहीं तो वो तो ऐसे अपने हट से वो विरुद्ध बात ही पकड़ कर रखेगा, तभी उसका कल्याण दूर है ऐसा समझना चाहिए। अब यही रुकते हैं हम। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद
नमो अरिहंताम नमो सिद्धाम नमो आर्याम नमो विद्याम नमो सुखदायकम।